दिन भर तारीख 11 अगस्त दिन बृहस्पतिवार में हूँ मोहनलाल शर्मा। राज्यसभा ने महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने करने संबंधी विधेयक को पारित किया।
हमारे यहाँ इस तरह से सवाल पूछेंगे कि आपकी शादी हुई है क्या, बच्चे कब करेंगे, इसका मतलब अगर वो बच्चा करना चाहती है तो उस नौकरी पे नहीं लिया जाएगा, उसको उसके लिए नाकाबिल ठहराया जाएगा।
कश्मीर में कर्फ्यू का 33वां दिन, सुनिए कैसे कटते हैं दिन और रात।
कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील दी जाएगी, हम हैरान हुए, हमें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे 1 महीने और 2 दिन की कैद की हमारी सजा पूरी होने को है।
भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी रियो ओलंपिक से बाहर हुई, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। राज्यसभा ने गुरुवार को मैटरनिटी बेनिफिट बिल 2016 को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। राज्यसभा में ये बिल श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने पेश किया था। इसमें गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली छुट्टी की अवधि 26 हफ्ते करने का प्रावधान है। बिल में बच्चा गोद लेने वाली महिलाओं को भी लाभ का प्रावधान है। दत्तात्रेय ने बताया ये कानून उन सभी संस्थानों में लागू होगा जहां 10 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं। भारत में 1961 से ही मैटरनिटी बेनिफिट कानून लागू है। जर्मनी ने चरमपंथ पर रोक लगाने के लिए नए उपायों का ऐलान किया है। जर्मनी के गृहमंत्री टॉमस डे मेजियर ने बताया कि विदेशी अपराधियों को प्रत्यर्पित करने में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि विदेश में चरमपंथी संगठन की ओर से संघर्ष करने वाले जर्मनी के नागरिकों की दोहरी नागरिकता समाप्त करने का भी प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि बड़े चरमपंथी हमलों से मुकाबले के लिए केंद्रीय कार्यबल तैयार किया जाएगा। इन प्रावधानों का ऐलान जर्मनी में हाल में कथित इस्लामिक संगठनों की ओर से किए गए हमलों के बाद किया गया है। सीरिया के एलेपो शहर से मिली रिपोर्टों के मुताबिक शहर के दक्षिणी पश्चिम हिस्से में जोरदार संघर्ष जारी है। इसके पहले रूस ने 3 घंटे के संघर्ष विराम का ऐलान किया था। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक विमानों और हेलीकॉप्टरों के जरिए विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। रूस का कहना है कि आज का संघर्ष विराम इसलिए लागू किया गया था जिससे मानवीय मदद मिल सके, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि शहर में फंसे आम लोगों की मदद के लिहाज से संघर्ष विराम की अवधि काफ़ी कम है। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टेफान दे मिस्तूरा ने जिनेवा में कहा,
We have noted today from the Russian Federation availability and willingness to discuss.
रूस के प्रस्ताव पर दमिश्क स्थित हमारे मानवाधिकार कोऑर्डिनेटर विचार कर रहे हैं। इस बारे में अभी तक हमसे चर्चा नहीं की गई है। हमारी राय में ये संघर्ष विराम की अवधि पर्याप्त नहीं है। ये थे स्टेफान दे मिस्तूरा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने क्राइमिया से जुड़ी सीमा पर सेना को अलर्ट रहने को कहा है। रूस ने बुधवार को यूक्रेन पर क्राइमिया में घुसपैठ की कोशिश का आरोप लगाया था। यूक्रेन और अमेरिका ने रूस के आरोपों को गलत बताया था। इसके पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्राइमिया में सुरक्षा बढ़ाने का ऐलान किया था। चीन के डांगयांग शहर में एक बिजली उत्पादन करने वाले कारखाने में हुए धमाके से कम 21 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 5 अन्य लोग घायल हो गए। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर और मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत आज भारत से करते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यसभा में आज मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक का मकसद कामकाजी महिलाओं को मिलने वाले मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 हफ्ते करना था। तो चर्चा के बाद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में संशोधन राज्यसभा में पारित हो गया। अब इसे लोकसभा में रखा जाएगा जहां सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा,
Secondly, it's not even just the malnutrition of the child that is affected. The woman's body needs to be repaired.
मेनका गांधी कह रही थी बच्चों की अच्छी सेहत को सुनिश्चित करने के लिए माँ का उसके पास होना बेहद जरूरी है. नवजात बच्चे को जन्म के बाद कम से कम 6 माह तक माँ का दूध जरूर मिलना चाहिए. ऐसे में जो महिलाएं नौकरी पेशा हैं उनके लिए जरूरी है कि उन्हें पर्याप्त अवकाश दिया जाए. बच्चे के साथ वक्त बिताने के लिए और अपनी खुद की सेहत सुधारने के लिए समय देना जरूरी है. मेनका गांधी ने कहा कि कई महीनों से उन्हें गर्भवती महिलाओं से इस अवकाश के बारे में लगातार पत्र आ रहे थे और इसके बाद बच्चों को जन्म देने वाली सभी महिलाओं को फायदा मिलेगा. महाराष्ट्र से सांसद रजनी पाटिल ने कहा कि आज के वक्त में ऑफिस में महिलाओं को शादीशुदा या फिर गर्भवती होने के चलते भेदभाव झेलना पड़ता है.
जब कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या कौन से भी नौकरी में हो, हिडन बायसेस जो होते हैं महिलाओं के प्रति, वो हमें थोड़ा सा एड्रेस करने की जरूरत है. वो व्हाट आर द हिडन बायसेस. अगर कहीं पे हमारी लड़की नौकरी मांगने के लिए चली गई तो बाहर के देश में ये पूछते नहीं कि आपकी शादी हुई है क्या, आपको कितने बच्चे हैं, ये सवाल वो पूछते नहीं हैं. लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से सवाल पूछेंगे कि आपकी शादी हुई है क्या, बच्चे कब करेंगे. इसका मतलब अगर वो बच्चा करना चाहती है तो उसको छुट्टी, उसको उस नौकरी पे नहीं लिया जाएगा, उसको उसके लिए नाकाबिल ठहराया जाएगा.
सांसद रजनी पाटिल की आवाज आप सुन रहे थे. तो इस विधेयक के क्या प्रावधान हैं, विस्तार से जानने के लिए मैंने बात की मुंबई में बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य से, जिन्होंने सदन की पूरी कार्यवाही पर नजर रखी.
सबसे अहम प्रावधान इस विधेयक का ये है कि 12 हफ्ते की तनख्वाह सहित छुट्टी जो इस वक्त भारत में गर्भवती होने पर किसी कामकाजी औरत को मिलती है, उसे बढ़ाकर करीबन 6.5 महीने यानी 26 हफ्ते करने का फैसला लिया गया है. दूसरा अहम प्रावधान ये है कि एक ऐसी श्रेणी को इसमें लाया गया है, एक ऐसा दायरा इसका बढ़ाया गया है, वो औरतें जो गोद लेकर बच्चा माँ बन रही हैं या सरोगेसी के जरिए माँ बन रही हैं, उन्हें भी इसके दायरे में लाया गया है. हालांकि उन्हें 12 हफ्ते की तनख्वाह सहित छुट्टी ही दी जाएगी. गौर करने वाली बात यह भी है कि ये 26 हफ्ते यानी 6.5 महीने वाली छुट्टी पहले 2 बच्चे होने पर दी जाएगी. अगर तीसरा बच्चा किया जाए तो फिर 12 हफ्ते की ही छुट्टी मिलेगी. इसके अलावा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि औरतें अपने करियर में छोड़े ना, वापस अपने काम पर लौटें, हिदायत दी गई है संस्थानों को कि वो वर्क फ्रॉम होम यानी घर बैठकर ही अपना काम करने की सुविधा भी औरतों को कुछ समय के लिए उपलब्ध कराएं. और ये तो इन्होंने एकदम निर्धारित कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया है कि जिन संस्थानों में 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं वहां पर क्रैश होना अब अनिवार्य होगा.
दिव्या, आपने प्रावधानों के बारे में बताया कि इस विधेयक में क्या क्या प्रावधान है, आम लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह का रिएक्शन है, आपकी कुछ लोगों से बात हुई होगी?
ज़्यादातर महिलाएं इसको लेकर बहुत उत्साहित हैं. हालांकि कुछ ने ये भी कहा कि ऐसा तो नहीं कि फिर उन्हें लेने से ही कंपनियां हिचकिचाएं, क्योंकि एक तरह से उन्हें बर्डन के तौर पे देखा जाए. पर ज़्यादातर औरतें जिनसे मैंने बात की मुंबई में, वो काफ़ी उत्साहित दिखीं.
अपने आप जब घर चलाना है तो बच्चों को रखने का प्रॉब्लम होती है. बच्चों की सेहत ऑल्सो लीव पर डिपेंड करेगी, क्योंकि मम्मी की हाजिरी बच्चे की हेल्थ को मदद करेगी.
3 महीने इज़ अ वेरी लेस टाइम, तो अगर 6 महीने कर दिया है तो मदर्स को उतना टाइम मिलेगा विद द चिल्ड्रन. 9 महीने के बाद जब ये होता है तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टेप. 6 मंथ्स का रेस्ट मिलेगा एंड आफ्टर दैट आई थिंक शी विल बी इवन बेटर विद हर वर्क.
आम लोगों की राय हमने सुनी. दिव्या, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि इस विधेयक की पृष्ठभूमि क्या है.
मोहनलाल जी, ये याद रखना जरूरी है कि 1961 में भारत मेटर्निटी बेनिफिट कानून लेके आया था, यानी 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं कि एक कानून जो तनख्वाह सहित 12 हफ्ते की छुट्टी देता है औरतों को, और साथ ही जिस दौरान वो गर्भवती हैं, यानी अगर उन्होंने आज बता दिया अपने दफ्तर में उनका 3 महीने का ही गर्भ है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, तो इस पूरे मियाद में उनकी नौकरी उनसे नहीं छीनी जा सकती. बाध्यकारी है सभी संस्थानों पर कि उस दौरान, क्योंकि ये माना जाएगा कि इस वजह से उनकी नौकरी ली जा रही है, चाहे कोई परफॉर्मेंस का इशू हो, पर ये माना जाएगा कानून के तहत कि ये नौकरी उनसे इसलिए ली जा रही है क्योंकि वो गर्भवती हो गई हैं. तो इस तरह से कोई भेदभाव ना हो, तो ये दोनों प्रावधान अभी भी कानून में मौजूद हैं. उसके बावजूद भारत में कामकाजी औरतों का औसत बहुत ही कम रहा है. पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो ये बहुत कम औसतों में गिना जाता है. विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 27% औरतें जो 15 साल से ज़्यादा उम्र की हैं वो काम करती हैं, हैं भारत में, और इसको अगर आप एक तुलनात्मक तरीके से देखें तो जो हमारे जैसे और विकासशील देश हैं जिनको ब्रिक्स की एक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की बात की जाती है, तो ब्रिक्स की जो एक समूह है उसमें चाइना सबसे ऊपर है 64% के साथ, यानी कि वहाँ जो औरतें काम करने लायक हैं उसमें से 64% काम करती हैं। साथ ही ये भी समझना अहम है कि भारत में जो बच्चों को पैदा करने और पालने का जो काम है वो ज़्यादातर औरत का ही समझा जाता है, ऐसा नहीं समझा जाता है कि एक आदमी और औरत की मिली बांटी जिम्मेदारी है। इस वजह से बहुत सारी औरतें बच्चा पैदा होने के बाद अपनी नौकरी छोड़ देती हैं, और इसको लेकर भी सर्वे मौजूद हैं और वो बताते हैं कि करीब आधी औरतें, 50% औरतें बच्चा पैदा होने के बाद अपनी नौकरी छोड़ देती हैं। और ये कानून में बदलाव अब इसी को एड्रेस करने की, इसी को सही करने की कोशिश है ताकि औरतें बच्चा पैदा करने के बाद भी काम करना जारी रख सकें।
तो राज्यसभा ने विधेयक तो पारित कर दिया, लेकिन कई सवाल हैं जिनसे जूझना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। जैसे असंगठित क्षेत्रों में जो औरतें काम कर रही हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, उनका क्या होगा? या फिर जो संस्थान या कंपनियां नौकरी देती हैं कहीं गर्भवती होने की बात जानकर नौकरी ही ना दे। विश्लेषण के लिए मैंने बात की सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की कार्यकारी निदेशक रंजना कुमारी से और पूछा कितना महत्वपूर्ण है इस विधेयक का पारित होना।
काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन थे और इसके लिए हम लोग काफी अरसे से मांग कर रहे थे, तो अब ये हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है और इस बात के लिए हम लोग खास तौर से मेनका गांधी को बधाई देते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही, मुझे याद है जब हमारी पहली मीटिंग उनसे हुई थी तो कुछ एजेंडा उन्होंने सामने रखा था जिसमें ये भी एक बात स्वीकार की गई थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हिंदुस्तान में दो बातें बहुत इससे प्रभावित होंगी, एक तो जो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है और दूसरा जो मैटरनल मोर्टैलिटी है, ये दोनों भी इससे कुछ प्रभावित होंगे और कम से कम इसमें कमी आएगी, इनकी दर में कमी आएगी, जो कि हम लोग MDG में वायदा करने के बावजूद कम नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। और दूसरा जो फर्क पड़ेगा वो माँ के स्वास्थ्य का, खास तौर से जो समय चाहिए वो मिल नहीं पाता है, और हिंदुस्तान की हर महिला एक तरह से कामकाजी है, अगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है या इंडस्ट्री में कर रही है या फिर वो ऑफिस में कार्यालयों में कर रही है, और अगर कहीं कोई काम नहीं करी तो घर का काम कर रही है, तो ऐसे में उसको समय मिलना बेहद बेहद जरूरी है। पर एक बात मैं जोड़ना चाहती हूँ कि हम लोग इसके साथ साथ पेटर्निटी लीव की भी मांग थी कि पिता की भी उतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए और उसको भी समय मिलना चाहिए बच्चे के साथ बॉन्डिंग का और बच्चे के लालन पालन का, जो कि अभी हो नहीं पाया है।
रंजना जी, सवाल यहाँ पर यह है कि तमाम ऐसे लोग जो कि असंगठित क्षेत्रों में काम करती हैं महिलाएं, उनके लिए क्या प्रावधान है? मतलब उनके लिए तो कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, वो तो नौकरी करती नहीं है, असंगठित क्षेत्र में काम करती है, संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती नहीं है, तो क्या ये एक बहुत बड़ी कमी देखती है आप?
निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कमी है, और चूंकि हिंदुस्तान की 90% महिलाएं असंगठित क्षेत्र में है जिसमें कि एग्रीकल्चर सेक्टर शामिल है, तो ऐसे में कोई भी लेबर लॉ, ये सिर्फ मेटर्निटी बेनिफिट की बात नहीं है, कोई भी लेबर प्रोटेक्शन, चाहे वो ILO द्वारा तमाम तरह के कन्वेंशंस बनाए गए हों, हिंदुस्तान जिनके सिग्नेटरी भी है, जिसको एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन वो लागू नहीं कर पाते हैं क्योंकि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो पाती है, वर्क प्लेस का डेफिनेशन हमारे यहाँ ठीक से नहीं है, खासतौर से जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, पीस रेट वर्कर है, जो इस तरह के लोग काम करते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि इसका लाभ वो उठा पाएंगे। लेकिन जो हमारे समय में एक कमीशन बना था, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर लेबर के लिए कमीशन बना है, हमें लगता है अगर उसका पूरी तरह से उपयोग किया जाए और ये 3-4 कमियां जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर के जरिए, खास तौर से एम्प्लॉयर पर अगर ये जिम्मेदारी डाली जाए, तो कुछ हद तक हम काफी बड़ी कवरेज दे पाएंगे।
विधेयक की बात तो हो गई, इसको लागू करना कितनी बड़ी चुनौती का काम होगा, क्योंकि संस्थान मानेंगे नहीं, संस्थान स्वीकार नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे।
बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत विस्तृत रिसर्च की जिसमें हम लोगों ने बैंकिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म और तमाम इस तरह के सेक्टर्स की स्टडी करके कि मेटर्निटी बेनिफिट अभी तक था उसका कितनी महिलाएं लाभ उठा पाती हैं, तो अक्सर हम लोगों ने मेजॉरिटी जिसमें कि 60% औरतें या तो उनको नौकरी छोड़नी पड़ी है या तो उनको प्रमोशन छोड़ना पड़ा है या मतलब किसी न किसी तरह का खामियाजा औरतों ने भरा है, और नहीं तो किसी न किसी बहाने उनको नौकरी से हटाने की कोशिश की जाती है। दूसरी चीज हम लोगों ने ये भी देखी जो सबसे ज्यादा जरूरी इस समय समझने वाली बात है कि अगर एम्प्लॉयर को ये पता चल गया किसी भी तरह से कि ये महिला जिसका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वो प्रेग्नेंट कर रही हूँ वो प्रेग्नेंट है और थोड़े दिन बाद वो मेटर्निटी लीव लेगी, तो आप ये श्योर शॉट समझिए कि 80% केसेस में वो नौकरियां उन लोगों को नहीं मिली। तो ये जो मानसिकता है एम्प्लॉयर्स की और खासतौर से कॉर्पोरेट सेक्टर में, इससे जूझने की बहुत ज्यादा जरूरत है और लागू करना मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती होगी।
सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की कार्यकारी निदेशक रंजना कुमारी विश्लेषण कर रही थी इस विधेयक का।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत प्रशासित कश्मीर में पिछले महीने हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद हालात अभी तक सामान्य नहीं है। विरोध प्रदर्शन जारी है। कर्फ्यू का आज 33वां दिन है। बीबीसी हिंदी ने जानने की कोशिश की है कि जब कर्फ्यू कई हफ्तों तक जारी रहता है तो कश्मीर के लोगों पर क्या बीतती है। कर्फ्यू में कश्मीर श्रृंखला की दूसरी कड़ी के साथ श्रीनगर से जाने माने लेखक निदा नवाज।
सुबह के लगभग 5 बज चुके थे। अचानक पुलिस की गाड़ी से घोषणा हुई कि सुबह 6 बजे से 7 बजे तक कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील दी जाएगी। हम हैरान हुए। हमें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे 1 महीने और 2 दिन की कैद की हमारी सज़ा पूरी होने को है। मेरा बेटा जल्दी से बिस्तर से निकला और मेरे बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाने लगा। वो भी खुशी से और हैरानगी से कहने लगा, डैडी आपने सुना कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील दी जा रही है 6 बजे से 7 बजे तक। मैंने दरवाज़ा खोला और उसको देखने लगा। उसकी आंखों में खुशी की ऐसी चमक थी जैसे उसने अचानक ईद का चांद देखा हो। उसके चेहरे पर फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई थी। वो फिर कहने लगा, डैडी मुझे कुछ स्नैक्स और बिस्किट्स खरीदने हैं, आज 1-2 मुर्गे भी लाएंगे। अब कर्फ्यू उठाया जाएगा और हमारे एग्जाम्स का फिर से डेट शीट निकलेगा। हम बड़ी बेसब्री के साथ 6 बजे की प्रतीक्षा करने लगे। मेरी बीवी एक लंबी सूची बनाने लगी। वो अपने आप से ही बड़बड़ाने लगी, हफ्ते भर के लिए सब्जियां लाके रखूंगी, मसाले भी कब के ख़त्म हो चुके हैं, 15 दिनों से साबुन और शैम्पू के बगैर नहा रहे हैं, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, टूथपेस्ट भी कब का ख़त्म हो चुका है, अब खाली ब्रश से दांतों को साफ करती हूँ कि कहीं आदत ही न छूट जाए। मेरे सिर में अधिकतर दर्द लगने लगता है। पिछले 20 दिनों से ब्लड प्रेशर की दवाई भी नहीं ले रही हूँ। मैं आज पूरे 1 महीने के लिए दवाई लाके रखूँगी। बड़े बेटे को 11 तारीख को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दुबई जाना है, उसने भी शॉपिंग करनी है। वॉशिंग मशीन में कपड़े भरे पड़े हैं, साबुन के बिना धोएंगे कैसे। मैं भी सोच रहा था कि 1 महीने से न ही बाल कटवाए हैं और न ही शेव किया है, चलो मैं आज पहले नाई की दुकान पर जाऊँगा। मगर 1 घंटे की कर्फ्यू डील में अगर नाई ने दुकान खोली भी तो वहाँ काफ़ी रश होगी। अभी 6:10 थे, हम सब घर के आंगन में आ चुके थे। हमारी हालत वही थी जो किसी दौड़ में हिस्सा लेने वाले लोगों की होती है कि कब सीटी बजे और वो निकल पड़े। अब 6 बज चुके थे। हम बाज़ार की तरफ चलने के नाम पर दौड़ रहे थे। बाज़ार का दृश्य अजीब था, जैसे पूरे शहर को अचानक कैद से रिहाई मिल गई हो। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब दुकानों पर खड़े थे। देखते ही देखते कर्फ्यू डील का 1 घंटा ख़त्म हो चुका था। लोग पूरी शॉपिंग नहीं कर पाए थे। पुलिस की गश्ती गाड़ी एक बार फिर कर्फ्यू लगाए जाने की घोषणा कर रही थी। मेरी आंखों के सामने दर्दनाक दृश्य था। कुछ लोग जूते हाथों में थामे दौड़ रहे थे। मैं हाँफते हाँफते घर पहुँच गया। बीवी ने सब्जियाँ लाई थीं लेकिन वो सड़ चुकी थी। मसाले भी लाए गए थे लेकिन बाकी सभी चीज़ें वो खरीद नहीं पाई थी। छोटे बेटे नीरज के चेहरे की खुशी एक बार फिर विलीन हो चुकी थी। बड़ा बेटा भी परेशान था। हम एक बार फिर कर्फ्यू की आड़ में कैद हो चुके हैं और मैं सोच रहा हूँ कि राजनीति और धार्मिक कट्टरवाद के बीच हम आम लोग कब तक कर्फ्यू की ये कैद सहते रहेंगे।
कर्फ्यू में कश्मीर, जब कई हफ्ते ये जारी रहता है तो क्या बीतती है। निदा नवाज की डायरी आप सुन रहे थे। और अब कार्यक्रम में एक अंतर्राष्ट्रीय खबर का जिक्र करते हैं। रूसी सैन्य बलों ने कहा है कि अलप्पो में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए हर रोज 3 घंटों तक सैन्य कार्रवाई बंद रहेगी। उत्तरी सीरिया के युद्धग्रस्त शहर अलप्पो में बशर अल असद की सरकारी सेनाओं और विद्रोहियों के बीच कई महीनों से लड़ाई जारी है, जिसके बाद से अलप्पो की नागरिक आबादी का वहां रहना मुश्किल हो गया है। वैभव श्रीवास्तव से बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए।
नागरिकों तक मानवीय मदद पहुंचाने के लिए रूस ने 3 घंटों तक सैन्य कार्रवाई रोकने की बात तो कही है, पर विद्रोहियों की ओर से भी उन्हीं 3 घंटों के लिए युद्ध विराम होगा या नहीं, ये बात अब तक साफ नहीं। वहीं संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 3 घंटे मानवीय मदद पहुंचाने के लिए बहुत कम हैं। राहत कार्य संस्था सीरियन अमेरिकन मेडिकल सोसाइटी के सलाहकार और सीरिया में काम कर रहे डॉक्टर ज़ाहिर सलूल ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र के आकलन से सहमत हैं। उन्होंने राष्ट्रपति ओबामा से मदद की अपील करते हुए ये भी कहा कि अगर बमबारी नहीं रुकती तो डॉक्टरों के पास कोई मौका नहीं रहेगा।
बमबारी और भूखमरी की वजह से 3 लाख लोग मरने के कगार पर हैं। सिर्फ 35 डॉक्टर बहुत ही कम संसाधनों के साथ जो भी कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें भी सुरक्षा चाहिए। ऐसी सुरक्षा सिर्फ अमरीका दे सकता है। अगर यहाँ इतने बड़े स्तर पर लोग मारे गए तो ये राष्ट्रपति ओबामा की सहायता की विरासत को बिगाड़ देगा।
सीरिया से डॉक्टर ज़ाहिर सलूल के शब्द। वहीं संयुक्त राष्ट्र में मानवीय और आपातकालीन मदद के उप महासचिव स्टीफन ओब्रायन ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि मानवीय मदद पहुंचाने के लिए उनका संगठन किसी भी सेना के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं।
We are absolutely neutral, independent and impartial.
हम पूरी तरह से निष्पक्ष और निर्दलीय हैं। यह हमारे लिए संभव नहीं है कि हम किसी सेना या सैन्य बल के साथ इस तरह मदद का काम करें।
संयुक्त राष्ट्र में उप महासचिव स्टीफन ओब्रायन के शब्द। अलेपो में महिलाओं के एक अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर फरीदा एल मुसलम ने बीबीसी से कहा कि अस्पताल पर कई बार हमले हुए हैं और बच्चों के साथ साथ कई महिलाएं भी मारी गई हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मदद की उम्मीदें कम हैं।
They just watch and just talk and do nothing. People here are dying every day.
ये लोग देखते हैं, बातें करते हैं और कुछ नहीं। यहाँ हर रोज लोग मर रहे हैं। हवाई हमलों में क्लोरीन गैस के बैरल फेंके जा रहे हैं। मारी गई कुछ महिलाएं गर्भवती थीं। हवाई हमलों की वजह से यहाँ बहुत परेशानियां हैं, पर कोई कुछ नहीं कर रहा।
महिलाओं के अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर फरीदा अल मुसलम के शब्द। राहत कार्य संस्था रेड क्रॉस का कहना है कि नागरिकों तक मदद तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक सभी दल युद्ध विराम को एक साथ ना माने। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में अनगिनत लोग मारे गए हैं और साथ ही लगभग 20 लाख लोगों के पास बिजली और पानी की सुविधा नहीं है।
अलेप्पो का हाल, और अब कार्यक्रम में आपकी चिट्ठियां।
आपकी राय श्रोताओं की चिट्ठियों के साथ मैं हूं स्वाति बख्शी और मेरे साथ हैं।
नमस्कार, मैं हूं राजेश प्रियदर्शी।
और हमेशा की तरह मैं शुरुआत पोस्टकार्ड से ही कर रही हूं। पहला पोस्टकार्ड जो हमें मिला है वो है राजू सेन का, खाराबेरा भीमावता लूनी जोधपुर राजस्थान से। इन्होंने तारीफ की है रेहान फजल साहब की और कह रहे हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी का जो साक्षात्कार था वो इन्हें बहुत पसंद आया है। साथ ही कहते हैं कि फजल साहब जितने भी साक्षात्कार करते हैं वो काबिले तारीफ होते हैं, लेकिन राजेश जोशी की आवाज़ आजकल बहुत कम सुनाई देती है।
बहुत शुक्रिया आपका। राजेश जोशी रेडियो के संपादक हैं और बहुत सारे जो रोज़मर्रा के प्रशासनिक काम हैं वो उनको करने पड़ते हैं। रेहान की जो प्रस्तुति है वो आपको पसंद आई है, हम उन तक पहुंचा देंगे। बहुत शुक्रिया आपका।
अभय कुमार निराला बगेन बक्सर बिहार से इन्होंने चिट्ठी भेजी है और इन्होंने कहा है कि पटना बिहार से मनीष शांडिल्य जी अब धीरे धीरे बीबीसी की कसौटी पर खड़े उतरने लगे हैं, लेकिन इनका सुझाव ये है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के नियोजन इकाइयों द्वारा प्रारंभिक और मध्य विद्यालयों में अब तक में नियोजित 40,000 फर्जी शिक्षक बहाली बनाम हाईकोर्ट व निगरानी ब्यूरो टीम की कार्यवाही पर भी रिपोर्ट पेश करें तो अच्छा होगा।
बहुत शुक्रिया आपका। हम सब लोग धीरे धीरे ही आपकी यानी हमारे श्रोताओं की कसौटी पर खरे उतरते हैं। ये अच्छी बात है कि आपको मनीष जी की रिपोर्टिंग पसंद आ रही है। जहाँ तक इस मामले का सवाल है, ये मामला अदालत के विचाराधीन है, मुकदमा चल रहा है, तो हमें बहुत एहतियात रखनी पड़ती है कि हम क्या रिपोर्ट कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका ये सुझाव हम मनीष तक पहुंचा देंगे।
गणेश प्रसाद का ईमेल है नेपाल से और इनका कहना ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो मटर्निटी लीव जो होती है उसको बढ़ाया है, बढ़ाकर 6 महीने की छुट्टी का जो निर्णय किया है, कह रहे हैं कि इससे सेवाग्राही लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।
नेपाल से इन्होंने चिट्ठी लिखी है और ये इनका क्या कहना है कि इससे
जो लोग काम करते हैं उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
क्यों?
मेरे ख्याल से ये कहना ये चाहते हैं कि बाकी लोगों पर शायद काम का बोझ आ सकता है अगर किसी को ज्यादा छुट्टी दी जाए तो।
मेरे ख्याल से भारत दुनिया के उन देशों में है, ऐसे हालांकि बहुत सारे देश हैं जहाँ पर मातृत्व अवकाश या जो बच्चे पैदा होने की सूरत में माँ को मिलने वाली सुविधाएं हैं वो बाकी जो विकसित देश हैं उनके मुकाबले बहुत कम है। और ये 6 महीने की छुट्टी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर आप देखें तुलना करें तो कोई बहुत लंबी छुट्टी नहीं है बल्कि बहुत सारे देशों में इससे काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां और दूसरी सुविधाएं दी जाती हैं। मेरा ख्याल है कि कामकाजी महिलाओं के लिए और न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए छोटे बच्चों के लिए इसके बहुत अच्छे परिणाम होने चाहिए।
सुरेंद्रनाथ सिंह का ईमेल है और इन्होंने वंदना जो हमारी रिपोर्टिंग कर रही हैं इम्फाल से उसकी तारीफ की है। कह रहे हैं कि बेहद अर्थपूर्ण और जानकारी भरी उनकी रिपोर्ट्स रहीं और कश्मीर पर जो ताज़ा कड़ी जिसमें कर्फ्यू के दौरान लोग किस तरह से मुसीबतों का सामना करते हैं उसकी इन्होंने तारीफ की है। और वंदना जी के बारे में और भी कई सारी ईमेल्स हैं जिनमें मंटू कुमार मोतिहारी बिहार से लिख रहे हैं कि सारी रिपोर्टिंग पसंद आई लेकिन लगे हाथ अगर एक सीरीज देश भर में हुए अहिंसक आंदोलनों पर हो जाए तो सोने पर सुहागा होगा।
ये बहुत अच्छा सुझाव है और हम इस पर विचार कर सकते हैं। वंदना ने इम्फाल से रोम शर्मिला से बात की, वहाँ से लगातार रिपोर्टिंग की जो बहुत सारे लोगों को पसंद आई और हमारी वेबसाइट पर और हमारे फेसबुक पर भी उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया। ये एक ज़रूरी चीज़ है जिक्र करना, कश्मीर से जो लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश है ये हमने बहुत सोच समझ कर तय किया क्योंकि हमें ये महसूस हुआ कि भारत में मीडिया में जो कश्मीर के लोग हैं उनकी आवाज़ सुनने को नहीं मिल रही। आम लोग जो घरों में बंद हैं वो उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, वे क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, तो वो आप तक लाने की ये कोशिश है हमारी। ये जो आपने जिसकी पहली कड़ी सुनी, आप ऐसी और कुछ आवाज़ें सुनेंगे आने वाले दिनों में।
रवि सिगालिया गुजरात से ईमेल लिखते हैं और ये आखिरी ईमेल मैं पढ़ रही हूँ। इनका कहना है कि नियमित रूप से बीबीसी सुनते हैं और पत्रकारिता आपकी वैसे तो निष्पक्ष होती है लेकिन कई मुद्दों पर आप आम मीडिया की तरह सोचते हैं और कभी कभी निजी मसले को भी जातिवाद के नाम पर उठाते हैं।
हम जानबूझकर तो ऐसा नहीं करते हैं और आपने कहा वैसे तो निष्पक्ष रहती है, हम तो हर तरह से निष्पक्ष रहना चाहते हैं लेकिन जहाँ जो मुद्दे होते हैं लोग जिस तरह की बातें कर रहे होते हैं जो चर्चा होती है और उसमें जो अलग अलग पक्ष होते हैं उसको जब आप उठाने की कोशिश करेंगे तो अगर कोई व्यक्ति जातिवाद का मुद्दा उठा रहा है तो उसको पूरी तरह से प्रसारित न करना भी हमें लगता है कि अनुचित हो सकता है कई परिस्थितियों में।
तो अब राजेश जी चलने का वक्त है और चलते चलते श्रोताओं को पता बता देती हूँ, मैं याद दिला देती हूँ, पता तो उनको है ही। बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 3035 नई दिल्ली 110003 और अगर आप ईमेल करना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
श्रोताओं आपने अपनी चिट्ठियां सुन ली और अब हम खेल समाचारों की बात करेंगे। कराची के एक निजी अस्पताल में विश्व प्रसिद्ध पाकिस्तान के क्रिकेटर और राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान हनीफ मोहम्मद, उनका निधन हो गया है। मेरे साथ आदेश कुमार गुप्त मौजूद हैं। आदेश बताएं कि कप्तान जो हनीफ मोहम्मद हैं उनका कैसा था करियर और कुछ जानकारी उनके बारे में।
बहुत ही शानदार बल्लेबाज और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक बहुत ही दुख भरा दिन है। हनीफ मोहम्मद आज 81 साल 234 दिन की उम्र में जिनका देहांत हुआ, उनका जन्म 31 दिसंबर 1934 को जूनागढ़ गुजरात में हुआ था और उनका करियर कितना शानदार रहा इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 55 टेस्ट मैच की 97 पारी में उन्होंने 3915 रन बनाए। उनका सर्वाधिक स्कोर 337 रन था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। 12 शतक और 15 शतक उन्होंने जमाए, अर्धशतक और 40 कैच भी पकड़े और इसके अलावा बेहतरीन ऑफ ब्रेक गेंदबाज, उन्होंने 53 विकेट लिए और 1952-53 में भारत पाक सीरीज़ में उन्होंने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में अपना पहला टेस्ट मैच खेला और जो उनकी यादगार पारी है 337 रनों की वो वेस्ट इंडीज़ में ब्रिजटाउन में 1957-58 तब खेली जब वेस्ट इंडीज़ ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 579 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित की थी। पाकिस्तान की पहली पारी 106 रन पर समाप्त हुई और फॉलो ऑन के बाद उन्होंने न केवल ये 13 शतक जमाया बल्कि मैच भी बचाया।
और ये जो लंबी पारी थी वो 990 मिनट की पारी थी। आदेश, चलते चलते आज रियो का भी हाल बता दें कि किस तरह से कौन कौन खिलाड़ी बाहर हो गया।
जी देखिए, रियो में अभी फिलहाल भारत और नीदरलैंड्स के बीच हॉकी का मुकाबला चल रहा है पुरुष वर्ग में, जहां भारत 2-1 से पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा तीरंदाजी में महिला रिकर्व एकल मुकाबले में मुंबाइला देवी और दीपिका कुमारी हारकर बाहर हो गई हैं। और इसके अलावा बैडमिंटन में पुरुष युगल वर्ग में मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी के अलावा महिला युगल में अश्विनी पोनप्पा और ज्वाला गुट्टा की जोड़ी भी हारी हैं अपने ग्रुप का पहला मैच।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। और अब इससे पहले की विदा लें, मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। राज्यसभा ने आज मैटरनिटी बेनिफिट संशोधन बिल 2016 को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इसमें गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली छुट्टी की अवधि 26 हफ्ते करने का प्रावधान है। अब इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र कार्यक्रम में नई खबरों के साथ उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।